والقواعد من النساء. اب قواعد کی بات آ گئی، قواعد بیٹھ رہنے والیاں، یہ اس کا لفظی ترجمہ، لیکن اصل میں اس کا معنی ہے وہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، نہ کوئی ارادہ رکھتی ہیں، نہ ان میں کوئی اب نکاح کی خواہش رہ گئی، کوئی طلب نہیں رہ گئی، یعنی اتنی ضعیفی کو پہنچ گئی. اور کیسی ہیں، لیکن شرط ہے، ایک وہ ہوتا ہے نا کہ مینوپاز کے بعد ویسے بھی عورتوں کے اندر اتنا کوئی نکاح کی تو خواہش نہیں رہتی، لیکن شرط دیکھیں، اللتی لا یرجونا نکاح، جو نہیں نکاح کی امید رکھتی، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، اس کو اگر آپ چھوڑ کے آگے دیکھیں، غیر متبرجات بزینت، نہ ہوں متبرجات، تبرج کرنے والیاں، تبرج گیا مطلب دکھاوا کرنے والی اپنی زینت کی، یہ ہے ایک شرط. وہ نکاح تو نہیں چاہتی، لیکن بعض دفعہ عورتوں کے اندر اتنی زیادہ اپنی بیوٹیفیکیشن کا جو شوق ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہوتا ہے، نکاح نہیں چاہتی. یہ نہیں کہ انہوں نے کسی سے شادی کرنی ہے، کسی میں انٹرسٹڈ ہیں، یا چاہتی ہیں کہ کوئی آدمی ہماری طرف دیکھ کے ہمیں رشتے کا پیغام بھیجے، ایسا نہیں ہے ان کے اندر، لیکن بس ان کو بڑا شوق ہے اپنی زینت ظاہر کرنے کا. کبھی یہ مہندیاں سر پہ لگاتی ہیں، بال ڈائی کر رہی ہیں، ناخن رنگ رہی ہیں، میک اپ کر رہی ہیں، جیولری پہن رہی ہیں، زر بر لباس پہن کے نکل رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں کہ بس میں اپنی زینت کا سارا. جیسے آپ کو زینت کا تو پہلے ہی میں بتا چکی ہوں زینت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو اب وہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، لیکن وہ اس ساری زینت کا اظہار چاہتی ہیں، ڈسپلے کرنا چاہتی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے، سمجھ آئیے؟ کیونکہ عورت کی جب 60-70 کی بھی ایج کو بھی پہنچ جائے تو اب نکاح کی تو طلب نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اس کے اندر پھر بھی نہیں کم ہوتی، یہ شوق کہ میں بس بنوں سمروں. اسی لیے وہ چاہتی نہیں کہ کوئی اس کی ایج بھی جانے، ایج بھی چھپاتی پھرتی ہے. کیوں؟ ابھی تک کیونکہ اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ میری میں زینت کروں اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میں میری اتنی ایج ہو گئی، میں تو ابھی بھی جوان ہوں. اگر یہ خیالات ابھی بھی ہیں نا، پھر یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو نکاح کی خواہش سے آزاد ہو گئے. اب سارے ہی کہیں گے ہم تو قواعد ہیں، ہم تو وہ ہیں، کیونکہ ان کے لیے ہے رخصت، ان کے لیے ہے ایکسیپشن، فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان کے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ رکھ دیں، یہ اتار دیں اپنے کپڑے. یا کپڑے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنا ستر ہی کھول دیں، استغفر اللہ، مطلب اپنا جلباب وغیرہ جو اپنا، یا گھر میں جو وہ دوپٹہ لے کے رکھتی تھی وہ اتار کے بھی رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں. وہ اپنی بڑی چادر جس سے لے کے وہ پہلے جوانی میں باہر جایا کرتی تھی، چلو اب وہ اس کو اتار سکتی ہیں، جو سر سے پیر تک کی چادر تھی یا بایا تھا یا کچھ تھا، وہ اب اس کو اتار سکتی ہیں، کیونکہ اب وہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں، نہ ان کو کوئی طلب ہے نکاح کی، نہ وہ کوئی زیب و زینت کرنے والی ہیں، نہ بال رنگے میں ہیں، نہ کوئی میک اپ ہے، نہ کوئی ایسے زربر لباس ہیں، بالکل جیسے بوڑھی، جن کو دیکھ کے بھی کوئی مرد ہم نکاح کا ذہن میں لا ہی نہیں سکتا، جن کو دیکھ کے بھی ہر کوئی کہتا ہے اماں جی یہاں بیٹھے، وہ ایک آپ کے ذہن میں اب آ گیا ہوگا نا کہ کیسی عورتیں. اور وہ یہ اکثر 60s میں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، 80s میں مے بی جا کے، یا وہ بلہ والا کوئی ایج نہیں یہاں پہ بتائی گئی کہ کوئی اس ایج کی عورت کے لیے یہ ہے، وہ کوئی بھی ایج ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک ایسی ایج ہے جس کے اندر کوئی بھی انسان جب مرد اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے منہ سے اماں جی ہی نکلتا ہے. وہ ایسی نہیں ہے کہ بال کٹائے ہوئے ہیں اور وہ بس میک اپ کر کے اور بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی نہیں اب ہیں تو قواعد، وہ تو لا یرجونا نکاح، نکاح کی تو طلب نہیں رکھتی، لیکن ٹپ ٹاپ اپنے آپ کو رکھا ہوا انہوں نے، یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر آ کے بہت ساری عورتیں جو تھوڑی ایج کی ہو جاتی ہیں وہ یہاں پہ آ کے کہتی ہیں دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو ہے کہ اب آپ کو پردے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ بالوں کو رنگتے ہیں، اگر آپ میک اپ کرتے ہیں، اگر آپ جیولری پہن رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ابھی تک شوق ہیں، اگر آپ کو اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کے شوق ہیں، تو پھر آپ قواعد میں نہیں ہیں. آپ نے ایک شرط تو ٹھیک ہے لا یرجونا نکاح، لیکن آپ غیر متبرجات بزینت، یہ تو آپ ہیں ہی نہیں، آپ تو اپنی زینت کو ڈسپلے کرتی ہیں، تو پھر آپ ان میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، देखना चाहिए कि को ऐसे ही अपने आप को ये सोच के ये ना हो कि अपने जिलबाब उतार के रख दें आप। लेकिन अब आप देख लें इस्लाम की सेंसिटिविटी, फिर भी हमको कहा गया कि अगर कवायद भी है ना तो वह यस्तफिफ खैरुल्लहुन, अगर वो फिर भी पाक दामनी इख्तियार करें तो उनके लिए बेहतर है, यानी फिर भी अगर वो अपने कपड़े नहीं उतारती, जिलबाब नहीं उतारती, तो तब उनके लिए ये ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। मैं एक आंटी को जानती थी, हम छोटे होते थे उस वक्त, तो इतनी बूढ़ी हो गई थी लेकिन अभी तक वो इतनी बड़ी चादर लेती थी, तो लोग उनको कहते थे मां जी अब आपको क्या जरूरत है, आप मतलब वो इतनी बूढ़ी थी, तो वो कहती थी नहीं इस वजह से कि फिर भी ये ज्यादा इसमें पाकीज़गी, यानी बेस्ट ये, हालांकि इजाजत है कि वो उतार दें लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर अभी भी उनके लिए यही है कि वो चादर लेके रखें। इसलिए कि आपको नहीं पता, देखिए ना एक औरत में नहीं भी ख्वाहिश है या कुछ है, आप अल्लाह ताला रहम करे, अभी कभी जब मैं न्यूज़ देखती हूँ ना बहुत सारी चीजें हैं, मुझे उनकी हिकमत समझ आ जाती है। एक न्यूज में था 80 साल की औरत को, पता नहीं कोई था जो काम करने के लिए आया वहां पे या जो भी वल्ला हुआ आलम क्या था, उसने उस 80 साल की औरत को रेप कर दिया। आप क्या कह सकते हैं किसी के दिमाग में क्या खन्नास आ जाए, कैसे हो जाए। तो शरीयत जो ना बड़ी हसास है इन सारे मामलात में, अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं फरमा रहे कि वल्ला हुआ अलीमुन हकीम, वल्ला हुआ अलीमुन हकीम बार बार क्यों आ रहा है यहाँ पे, वल्ला हुआ समीउन अलीम क्यों आ रहा है। अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, क्योंकि बंदे को फौरन ये हो जाता है नहीं नहीं मुझे ज्यादा जी पता है, मैं ज्यादा जानती हूँ। तो अल्लाह ताला को पता है कि किसके लिए क्या चीज में ज्यादा सेफ्टी है, वो हमें ही तो प्रोटेक्ट करना चाहता है। अल्लाह ताला को इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम चादर लें कि नहीं लें या क्या करें, या एक बूढ़ी औरत है वो जिलबाब ले या उतारे, उसकी बादशाहत में क्या फर्क पड़ता है। खुद सोचे ना, कॉमन सेंस भी अपनी यूज किया करें। ऐसी औरतों को लगता है जिसमें गश ही पड़ गया कि हाय अगर हमें पर्दा करना पड़ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे सांस ही रुक गई है। सबसे बड़ा एक इम्तिहान ही औरत के लिए ये पर्दा बन गया है आज के दौर में, सबसे बड़ा इम्तिहान कि वो इसके ऊपर नहीं आती, कहती है और जो मर्जी मेरे से करा दो, बस ये इतना उसको शौक है ना अपनी जीनत को डिस्प्ले करने का। और शैतान वहीं से तो आता है, शैतान आपकी वीकनेस से आता है ना, जाहिर है जिस चीज का आपको शौक नहीं होगा, अब आपको गाड़ियों का मसलन शौक नहीं है तो शैतान आपको तो थोड़ी आगे कहेगा कि तुम गाड़ियों को देखो ये कौन सी गाड़ी जा रही है। हाँ कई औरतों को होता भी होगा लेकिन अमूमी तौर पे नहीं होता ना, अब सियासत का इतना शौक नहीं होता औरतों को, तो अब शैतान उस तरफ से थोड़ी आएगा कि तुम सियासत में हिस्सा लो, देखो सियासत में ये हो रहा है और वो हो रहा है। उसको पता है यहाँ ये जगह है जहां से ये फसलती है। अल्लाह अकबर। तो अगर अभी तक औरत के अंदर ये ख्वाहिश है फिर तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं अपना जिलबाब उतारना। अगर वो इस सारी के अंदर आ जाती है, वो वाकई अलकवायद में है, तब भी बेहतरी उसके लिए क्या है तो अभी भी ना उतारे। हाँ इजाजत इसकी है, ठीक है, बेहतरी में और इजाजत में फर्क है ना। अब आप देख लें कि कुरान में ये बात आ गई है बूढ़ी औरतों के बारे में भी, बूढ़ियों के, और अगर कोई औरत सारी जिंदगी यही काम करती रहे तो वो तो फिर सोचे ना जरा, वो कवायद वाला ही काम वो करती रहे, तो उसने सारी जिंदगी जलबाब उतार के रखा हुआ कभी भी नहीं लिया, तो सोचे वो तो इस हुक्म पे क्या अमल करेगी, वो तो हमेशा से ही ऐसे रही है। उसने अल्लाह ताला को वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला ने फरमाया सारी बातों के बाद कि अल्लाह ताला सुनने वाला भी है जानने वाला, जो दिल में बातें आती हैं जो इंसान कहता है ना आए नहीं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो ऐसे है, ये तो ये लोग क्या बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो और पता नहीं मुझे ही ज्यादा पता है कि मैंने कैसे बनना संवरना और कैसे रहना है, मुझे ये पता है कि लूज कपड़े पहन लूँ तो तब भी ठीक है, मुझे ज्यादा पता है कि आंखों के अंदर ही शर्म होती है और हया होती है और नजरों के अंदर होता है पर्दा और पता नहीं क्या, ये सारी बातें अल्लाह सुन रहा है और वो जानता है, वो सुन रहा है और जानता है। और लगता है कि ऐसी औरतों को ये ईमान ही नहीं है कि अल्लाह ताला सुनता है और जानता है, उसको ज्यादा इल्म है, वो बहुत सुनने वाला है और वो सारी हमारी बातें सुन रहा है जितने ही कुछ हम बोल रहे हैं। मैं तो अल्लाह ताला के पास जाके कह दूंगी अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था, ये नहीं सुन रहा अल्लाह ताला। तो अब आप सोच लें कि जिनके बूढ़ों को, बूढ़ी औरतों के लिए भी इतनी बूढ़ी के वो अलकवायद हैं, अम्मा जी हैं वो, उनके लिए भी ये हुक्म है, फिर बाकी औरतों के लिए क्या होगा? फिर आज जिसको, जिन लोगों के, जिस उम्मत के कुरान में यहां तक लिखा हुआ है, उनके आज बाजारों में जाके देख लें, शादियों में देख लें, पार्टीज में देख लें, इंसान हैरान हो जाता है कि वाकई ये कुरान पे ईमान लाने वालियों की पार्टी है। आप पूछ के देख लें ऐसी शादियों और पार्टियों पे, सब कुरान पे ईमान रखने वाली है वहां पे, सब कहेंगे हाँ हमारा कुरान पे ईमान है। जाहिर है वो कहेंगे कुरान पे ईमान के बगैर तो मुसलमान ही नहीं। तो कुरान कह क्या रहा है, ईमान किस चीज के ऊपर है? कुरान के अहकामात पे, कुरान की बात पे ईमान है तो कुरान तो कुछ और कह रहा है। जहां पे मर्दों और औरतों का एक ही ड्राइंग रूम है, एक ही जगह बैठते हैं, मिक्स्ड गैदरिंग है, सज धज के बैठा जाता है, इस हुक्म का फिर क्या आप कहेंगे? जब औरतें पूरे बनाओ सिंगार के साथ मर्दों के सामने घूमती फिरती हैं, शादियां पार्टियां जो भी हैं, बल्कि अगर आगे पीछे वो अबाया लेती भी हैं, चादर लेती भी हैं, तो शादी पे उतार देती हैं, क्योंकि शादी पे तो थोड़ी कोई लेता है, इस पे तो उतारनी ही उतारनी। ये उन्हीं औरतों के कुरान में ये बात लिखी हुई, उन्हीं औरतों के कुरान में। और जिसको बने जो गैर मुतबर्रिजात हिं बिज़ीनत हैं, उनके लिए भी क्या चीज बेहतर है? तो आप अंदाजा कर लें कि हमारा ईमान क्या है कुरान पे। हम किसको इल्म वाला ज्यादा समझते हैं, किसका, हमारे नजदीक कौन है जो ज्यादा बेहतर जानता है हमारे बारे में? लोग, फैशन, आज के ट्रेंड, मैं खुद या अल्लाह ताला? अब आप देखें जो इनसे छोटी उम्र की औरतें हैं, एक तो वो बिल्कुल है ना जो मांझी मांझी जिनको कहते हैं, उनसे जो छोटी उम्र की औरतें हैं वो सब वो हैं जिनके बारे में हम पहले अहकामात पढ़ चुके हैं, वो कवायद में नहीं आती। ठीक है, तो वो इस इजाजत को तो अवेल कर ही नहीं सकती। और आज तो कासियातुल आरियात के, वो जिनका हदीस में आता है ना कि लिबास पहनने के बावजूद बरहना, जब औरत का चेस्ट जो है वो मतलब एक उसकी शेप वाजे हो रही हो, उसका फिगर वाजे हो रहा हो, वो जब आम हो तो वो इसमें ही है। अब वो जिस माशरे में ऐसी औरतें हों कि बस दुपट्टा इतना सा है कि बस आगे रखा हुआ है सीने के आगे ना, वो ऐसे वी की शेप शेप में, बाकी सारा सीना भी पता चल रहा है, फिगर भी पता चल रहा है, तो उस माशरे में पाकीजगी कहाँ से आएगी? निगाहों की हिफाजत कैसे होगी? फिर माशरे में रेप केस होंगे कि के नहीं होंगे बताएं? तो इसलिए इसमें इसलाह की जरूरत है। और अगर कोई आज के दौर में कह दे ना ऐसी बातें, तो कहते हैं इसकी तो नीयत ही खराब है, उसी के ऊपर इल्जाम लगा देते। ये तो उस जमाने की बातें जब मुनाफिकीन होते थे, तो आज तो बहुत ईमान वाले सब सहाबा कराम ही फिर रहे होंगे मेरा ख्याल। आप देख लेंगे, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मुझे कहते हुए भी ये बात शर्म आ रही है कि सबसे टॉप पर पोर्नोग्राफी कौन से मुल्कों में देखी जाती है। कभी अगर आप इस चीज को रिसर्च करके देख लें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। अल्लाह माफ करे हमें। तो इसके बाद मर्दों की निगाहों में क्या हया बाकी रह जाएगी? और उसके बाद उनको आगे औरतें ऐसी नजर आ रही, तो उनकी निगाहें भटकेंगी कि नहीं भटकेंगी? अब वो आपको बता के भटकाएंगे निगाहें, आपको बताएंगे कि हम ये, हमें ये चीज अट्रैक्ट कर रही है। अल्लाह अकबर। वैसे हम बहुत अकलमंद हैं, लेकिन इस मामले में हम जानबूझ के बेवकूफ बन जाते हैं। आगे अब खाने पीने के से मुतल्लिक अहकामात पे बात आ रही है, क्योंकि उस जमाने के अंदर ऐसे होता था कि बाज लोग अकेले खाने को समझते थे कि ये सही नहीं है अकेले बैठ के खाना, और जब तक किसी के साथ ना खाया जाए उस वक्त तक मतलब ये सही नहीं है। फिर दूसरा ये भी है कि जब आयत उतर आई, या अय्युहन्नास ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, तो वो सहाबा कराम को बड़ी ये फिक्र हुई अगर हम किसी लंगड़े या किसी अंधे या अपाहज हैंडीकैप के साथ अगर हम बैठ के खाना खाएंगे तो वो उस बेचारे को या तो नजर नहीं आ रहा या उसका हाथ नहीं सही काम करता या कुछ है ऐसा, तो हम तो वो नाहक उसका खाना खा लेंगे, क्योंकि माल में खाना पीना भी आता है, तो हम अच्छा अच्छा वाला हम खा लेंगे, उस बेचारे को नजर नहीं आ रहा, वो नहीं खा सकेगा, या लंगड़ा पूरी तरह सही तरह बैठ ही नहीं सकता, या बीमार है तो अगर तो कमजोरी की वजह से अच्छी तरह नहीं खा सकेगा, तो हम उसके हिस्से का भी खा जाएंगे या अच्छा अच्छा हम खा जाएंगे, तो फिर तो ये बातें लोग गया। तो सूरह बकरा में आता है ना, वला ताकुलूहुम वलकुम बैनकुम बिलबातिल, तो ये जब उनको ये फिक्र हुई, क्योंकि सांप हमारी तरह थोड़ी लेते थे आए तो वो कि भाई चलो पढ़ लिया तो खत्म बस, नहीं वो इस चीज को बहुत सीरियस लेते थे। तो मुसलमानों ने फिर जो हैंडीकैप थे, जो ब्लाइंड, जो जैसे लंगड़े वगैरह, इनके साथ खाने में उन्होंने हर्ज महसूस किया कि हम ना खाएं इनके साथ खाना ना। तो अब आगे आगे आ रहा है, लैसा अलल आमा हरजुन वला अलल आरजी हरजुन, ना अंधे के ऊपर कोई हरज है, ना लंगड़े पर कोई हरज है, वला मरीज हरजुन, और ना ही मरीज पर कोई हरज है, या नहीं है ये कि हाँ आप उसके साथ खा लो खा लें। और इसका एक वजह ये भी बताई जाती है कि बाज लोगों को इस चीज के अंदर मतलब अच्छा महसूस नहीं होता था कि वो इन लोगों के साथ बैठ के खाएं खाना, क्योंकि उनको घिन महसूस होती थी कि बीमार है या लंगड़ा अंधा है, कि किस तरह खा रहे हैं, किसी की रालें टपक रही, किसी का कुछ हो रहा है, तो वो कराहत महसूस करते थे। तो या वो कहते थे बाज दफा अंधा ज्यादा खा लेता है या लंगड़ा ज्यादा जगह घेर के बैठ जाता है। तो ये आयत नाजिल हुई, तो जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजजूम को, मजजूम होता है जिसके वो कोढ़ का मर्ज होता है ना, उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ खाने के प्याले में शरीक किया और बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद करके खाओ। हालांकि उनके साथ तो कोई बिल्कुल ही नहीं खाना चाहता था कि हाँ ये मरीज है और हमें भी ना कहीं बीमारी हो जाए, और पूरी उनकी रालें टपकती हैं और ऐसे होता है। इसी तरह एक स्याह रंग का चेचक का मरीज था जिसकी खाल छिली हुई थी और कोई उसके पास बैठना बैठता नहीं था, वो बंदा किसी के पास बैठ जाता था तो उसको उठा देते थे लोग, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़कर अपने साथ बिठा लिया। ठीक है, तो सईद बिन मुसैब ने फरमाया कि मुसलमानों में जब किसी गजबे में जाते तो बीमारों और अपाहजों को अपने घरों में छोड़ जाते और अपने घरों की चाबियां उनको दे देते थे, और वो लोग कहते थे कि हमारे लिए इनके घरों में खाना पीना हलाल नहीं, ये जो जो बेचारे बीमार या ये अपाहज होते थे ना, और इसमें हर्ज समझते थे कि हम कैसे उनके घरों से खाएं, वो कहते थे वो तो घर पे नहीं है तो हम कैसे खा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिनका जवाब इसके अंदर है कि जो अपाहज है, जैसे अंधा है या लंगड़ा है या जो मरीज है, उसमें कोई हर्ज नहीं कि वो तुम्हारे साथ अगर खाना खा लेता है। और वो जो मैंने आपको आयत भी बताई है कि एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, और उसके बाद सहाबा को फिक्र हो गई कि कहीं ये ना हो कि हम इनका माल खा लें, तो उसकी भी इजाजत मिल गई कि नहीं ऐसी कोई हर्ज नहीं है तुम्हारे ऊपर कि तुम इनके साथ खाओ। और वला आला अनफुसिकुम, और ना ही तुम्हारे अपने नफ्सों पर, ना खुद तुम पर कोई हरज है, अंताकुलू मिन बुयूतिकुम, कि तुम खाओ अपने घरों से। अपने घरों से का मतलब क्या है, इसमें दो मतलब है, यानी औलाद के घर या अपनी बीवियों के घर, किसी आदमी की एक से ज्यादा बीवियां हैं या एक ही बीवी है, तो अपने घर से अगर वो कोई खा लेता तो उसमें हर्ज नहीं, और अपने औलाद के घर से भी खाने में कोई हर्ज की बात नहीं, कि कोई बंदा अपने बेटे के घर में, बेटी के घर में खा लेता है तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ से हमारी वो हिंदुआना सोच भी खत्म हो जानी चाहिए कि हाय बेटी के घर का पानी नहीं पीना, और इतना बड़ा इसको मसला बना लेते हैं। अल्लाह ताला ने तो इसकी बिल्कुल कोई ममानियत नहीं रखी, वो हमारे वो हिंदुआना दिमाग ही सही नहीं होते, और अभी तक दिमागों के अंदर यही बैठा हुआ कि पता नहीं खा लिया उसके घर का तो कितना बड़ा गुनाह हो गया। औ बुयूति आबाइकुम, यहाँ अपने बापों के घरों से तुम खा लो तो कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बाप के घर से खाने का मतलब क्या, यानी जो आपके बाप हैं, दादा हैं, नाना हैं, उनके घर से भी खा सकते हैं, और इसी तरह औ बुयूति उम्महातिकुम, या माओ के घरों से। अब माँ का घर ये भी बाप के घर से अलग भी तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि माँ और बाप में कोई सेपरेशन हो गई हो, या फिर माँ के घर में दादी नानी का घर, इस तरह भी हो सकता है। औ बुयूति इखवानिकुम, या तुम्हारे भाइयों के घरों से, भाई में सके भाई भी हैं, सुतेले भाई भी हैं, मुंह बोले नहीं, सॉरी मुंह बोले नहीं, जो ये दूध पिलाया होता है जिनको, रजाई भाई, रजाई भाई भी हैं। और बुयूती अखवाती कुम, या तुम्हारी बहनों के घर, बहनों के घर से भी खा सकते हैं। अब ये देखें वही वाली बात जो मैंने अभी कही कि बेटियों के घरों से भी नहीं खाते थे और बहनों के घरों से भी, ये हिंदुओं को देख देख के ना कि बहन के घर का पानी नहीं पीना, वो ये भी एक जाहिलाना रसम, तो इसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है कि बहन के घर से भी खा सकते हैं। औ बुयूति अमामिकुम, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपनी मामुओं के घरों से, या अपने खालाओं के घरों से, ये रिश्तेदार गिनवाए गए। और इनमें आप देखें जिन रिश्तेदारों का सबसे ज्यादा हक है, वो सबसे पहले उनका जिक्र है, पहले तो अपने घरों से ही खाने का। और ये भी कि ये पीछे से भी अगर इस आयत को कनेक्ट किया जाए तो किसी मरीज का, या किसी ये जो हैंडीकैप्ड होते हैं, अगर वो किसी के घर से खा लेते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है, ठीक है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि अगर वो, क्योंकि वो बेचारे इजाजतें अगर लें और फिर जाएं और फिर जाके वो करें तो उनके लिए मुश्किल है, लिहाजा अगर वो किसी के घर जाते हैं और वहां पे खा लेते हैं तो इसमें उन पे कोई हरज की बात नहीं है। और फिर हमने देखा अपने घरों से खाने, और सबसे पहले माँ बाप के घर से खाने के अंदर कहा गया कि कोई हरज की बात नहीं। अब इससे देखें एक बड़ी ही अच्छा एक नुक्ता भी निकलता है, जो कि आप गौर कीजिए कि इसका मतलब है मिलें जुलेंगे तो खाएं पिएंगे ना, और अगर मिलना जुलना ही नहीं है, सिला रहमी ही नहीं है, तो खाएंगे कैसे। मतलब मिलते जुलते रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। और ये भी पता चल गया कि जो हैंडीकैप्ड है उनके साथ खाने में आर ना समझो, बीमार है कोई, कोई माजूर है, उसको खाने से पीछे रखा हुआ है ना, बाहर ले जाया जाता है, घर में भी एक कोने में उसको बिठा दीजिए तो तुम जाके वहां पे खाओ, सबके साथ नहीं ये खा सकता, नहीं, ठीक है। तो और फिर ये भी देखे ना, अब कितनी लॉजिकल बात है कि पीछे हमें पर्दे के अहकामात जब बताए गए तो ऐसे लगता है कि पता नहीं पर्दा करके बैठ जाना है, तो अब किसी से ना मिलना जुलना, कोई सोशलाइजिंग नहीं करनी, कोई आ भी जाए तो बस छुप के बैठ जाए। जाहिर है अगर कोई यानी अगर फुप्पी का घर है तो फुफ्फा भी होंगे, खाला का घर है तो खालू भी होंगे, बहन का घर है तो बहनोई भी होंगे, तो ये तो चीजें होंगी। अगर आदमी है तो भाई का घर जाता है तो वहां पे भावज भी होंगी, ठीक है, चचा के घर जाता है चची भी होंगी, निकाल तो नहीं देंगे उनको घरों से, मामू के घर जाता है मामानी भी होंगी, वो तो नहीं महरम। तो इसका मतलब ये नहीं इस्लाम कह रहा कि जब आप पर्दा करना शुरू कर दो तो बस फिर इनके घर में आपने बायकॉट कर देना, जाने से अब आप उनके घर नहीं जा सकते, या ऐसे उनके साथ खाना भी नहीं मिलके खा सकते। और पर्दे का मतलब ये नहीं होता कि आप कमरे में घुस के बैठ जाएं, बहुत सारी खवातीन जब पर्दा शुरू करती हैं तो वो उसको कहती हैं शरई पर्दा, शरई का पर्दे का मतलब उनका ये होता है कि बस अब तो किसी के सामने जाना ही नहीं। भाई आप देखें जीनत को छुपाने का हुक्म दिया गया है, बायकॉट करने का हुक्म नहीं दिया गया। अब वो क्या है, मेहमान आए हैं, अब किधर है बहू रानी, वो बहू रानी वो तो जी कमरे के अंदर बंद है, वो ऊपर अपने कमरे में बैठी हैं, क्यों बैठी हुई हैं, क्योंकि वो पर्दा करती हैं, पर्दा करती तो तशरीफ ही नहीं लाएंगी नीचे, ये थोड़ी पर्दे का मतलब है। भाई आप आएंगे, आप जो चीजें बनानी हैं, जो किचन का काम करना है वो भी आप सारा करेंगे, आप किसी जगह आप रख भी देते हैं चीज को, हस्बैंड आके वहां से उठा के भी ले जाए, वहां से जाके लोगों को सर्व भी कर दें, आप जीनत को छुपा रही हैं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही जाके कमरे में बंद होके बैठ जाएं, तो अगर कमरे में ही बंद होना होता तो फिर तो ये सारे अहकामात की जरूरत ही नहीं थी कि जीनत को छुपाया जाए, फिर तो सिर्फ ये कह दिया जाता वो कमरे में बंद रहा करें जब कोई आए तो खुद से ना ना बना लेकर, फिर लोग चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं इनका तो क्या भाई, अब इन्होंने पर्दा क्या शुरू कर दिया तो काम ही वर्क करने बंद कर दिए। तो अब इस तरह से भी होता है कि एक जगह खाना पड़ा हुआ है, आप ठीक है लेके वहां से आप जाके अलग बैठ जाए, मर्द अलग बैठ जाए, इस तरह से कर ले। जरा जाहिर है हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि दो दो जगह खाना लगाया जाए, एक दफा वो आके ले लें, एक दफा वो आके ले लें। और अगर आपने सही पर्दे के साथ अपना चादर बड़ी ली हुई है घर के अंदर, जरूरी नहीं कि आप बुरका ही पहने, आप चादर आपने बड़ी ली हुई है, आप उसके मुताबिक आप उठ के अपनी जीनत ना जाहिर करें और आप अपना सारा काम करती रहेंगी। बस घर इतने छोटे होते हैं कि वहीं पे वहीं मेहमान बैठे हुए हैं, वहीं पे किचन है, वहीं पे सब कुछ आपका है, तो अब आप क्या करेंगे? बहुत बड़े बड़े हर एक के पास तो नहीं घर होते, तो फिर क्या करें? वहीं पे गैर महरम भी हैं और वो रिश्तेदार भी हैं। मसलन है कि एक जगह पे कोई दामाद आता है किसी का, तो अब वो उन वालदेन के लिए दामाद है, लेकिन उसी घर में बहू भी रहती है, दामाद भी आ जा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? आई ना वो। तो ये चीजें, इस्लाम बहुत प्रैक्टिकल दीन है, आपको जो हदूद बता दी गई वो बता दी है, कमरों में आपने जाना है इजाजत लेकर जाना है, किस तरह जाना है, क्या आपने घर में जाना है तो इजाजत लेकर जानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिलना जुलना बंद कर देना, ठीक है? तो इस चीज को जहन में रखें, खाम खा की अपने ऊपर एक वो तारी ना करें दीन के नाम पर, कि आप दीन को गलत पोट्रे करें। तो यहां पर हमें पता चल गया कि रिश्ते, ये सारे ही रिश्ते हैं, और सिर्फ औरतों को ये पता चलेगा खाला मामू का घर ही बस रिश्ता है, बेटा चच्चा पुप्पी तो तुम्हारे दुश्मन है, ये नहीं है। यहाँ पे देखिए सारे ही रिश्ते हैं, और इसमें जहां पे देखिए आगे है, औ मा मलक तुम मफातिहा हो औ सदीकुम, ये भी हैं कि जिनके घर की चाबियां आपके पास हैं। मसलन कोई आपको चाबी दे गया, उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे घर में चक्कर लगाते रहना, आप गए वहां पे फ्रूट पड़ा हुआ आपने उठा के खा लिया, या कोई चीज है आपको भूख लगी थी आपने फ्रिज में से कोई चीज ले ली, कोई हर्ज नहीं है इसमें। या आपके दोस्त का घर, उसमें भी आप खाना खा सकते हैं, आपको कोई दे रहा है ऑफर कर रहा है आप खा सकते हैं। ये भी ना करें कि दूसरों के फ्रिज खोल खोल के उसके अंदर सारा कुछ चट कर जाए, और जहां पे जितनी बेतकल्लुफी है उसके मुताबिक है ना, जब अपने घर होंगे तो फिर बिल्कुल ही जो मर्जी खाएं, जहाँ पे जो आगे से आगे हैं कम से कम बेतकल्लुफी होती जाती है, माँ बाप के घर में ज्यादा बेतकल्लुफी है, बहन भाइयों के घर में ज्यादा बेतकल्लुफी, उससे ज्यादा चचा पुप्पी के घर में, खाला मामू के घर में जरा कम है, तो उस मुताबिक है। दूसरा उसमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि देखें, एक तो ये आपकी बेतकल्लुफी मतलब फ्रेंकनेस, कि कहाँ पे आपकी फ्रेंकनेस से आता है, दूसरे ये भी ख्याल रखना चाहिए इस बात के अंदर कि देखें आप जहां से भी खा रहे हैं जो भी है उसके अंदर एक एतदाल का पहलू जरूर रहे। ऐसे भी नहीं हो कि किसी का आपको पता है कि ये इस बंदे को ये पसंद नहीं है कि मैं इनके फ्रिज खोलूं, कि मैं इनकी पेंट्री में जाऊं, इनको नहीं ये पसंद है, तो आप ये काम ना करें। जिसका आपको पता है कि भाई वो पसंद करेगा, कि वो कहेगा बल्कि आके कि आपने क्यों नहीं खा लिया, ये पड़ा हुआ था, ये पड़ा हुआ था, अब तुम यहाँ पे आई हो तो तुम खा ही लेती, तो हम उस तरह से हम देखें। तो इसमें सब सब में एक समझ बूझ, एक इतदाल के साथ चलना भी एक बात होती है, हर जगह हर चीज नहीं चल सकती। अब सर अपने माँ बाप के घर में जैसे आप करते हैं ना वैसे हो सकता है दोस्त के घर में उस तरह से नहीं बेतकल्लुफी हो आप, इस तरह हो सकता है आपकी कोई कोई पुप्पी या कोई मामू या कोई खाला ऐसी हो कि जो नहीं पसंद करते, वो बहुत फिनकी हैं, वो नहीं पसंद करते, कहते नहीं हमारा फ्रिज ना कोई खोला करे, वो नहीं मुझे पसंद, तो नहीं खोले फिर, ठीक है? तो लिहाजा हम उस तरह से देखें कि जैसे हम जब किसी के घर है, हमें इतना तो पता होता है कि इस बंदे का मिजाज कैसा है, इसका ये कैसा है, तो फिर हम उसके मुताबिक चलें। दूसरी इसमें ये भी बात है कि ये जो हमारे पास एक बेजा एक तकल्लुफ की बात होती है ना, नहीं 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 अब कोई आपको दे रहा है तो नहीं नहीं किए जाना, हालांकि चाहे दिल भी कर रहा हो लेकिन फिर भी नहीं नहीं क्यों? इसलिए कि अगर मैंने तो जल्दी फौरन ले लिया तो कहेंगे देखो कितनी भूखी है। वो पता है अरबों में ये बात बड़ी अच्छी है, अगर वो आपको पूछेंगे ना कि आप खाएंगे और आप कह दें, अब आपका दिल भी चाह रहा है लेकिन आप कहें नहीं नहीं क्योंकि आपने पहली दफा तो यही सुना हुआ है और हमारा कल्चर यही कि हमने पहली दफा तो नहीं नहीं करना, तो दूसरी दफा नहीं आपको पूछेंगे फिर भूखे ही बैठे रहे वो नहीं फिर पूछते, तो मतलब आपने जब नहीं कह दिया तो वो आपको ऐसे फोर्स करके नहीं खिलाएंगे, अच्छा हमारा ये होता है तरीकाकार कि हमने भी कहना होता है, दूसरे ने नहीं नहीं भी कहना होता है, फिर हमने दोबारा कहना होता है क्योंकि हमें भी पता होता है कि ये तो तकल्लुफ कर रहा है, और फिर हमने और उसको बस फोर्स करना होता है, फिर उसने भी और फोर्स नहीं नहीं फिर उसके बाद उसने बड़ी हेसिटेशन के साथ लेना है कि जैसे मुझे परवाह तो बिल्कुल नहीं है लेकिन चलो मैं आपके कहने पे खा लेती। ये पता नहीं क्या ऐसे बेजा हमारी बिल्कुल बेकार बातें हैं, जहां पे चीजों की सेंसिटिविटी होनी चाहिए वहां पे तो है नहीं, और इसमें इतने सेंसिटिव बन जाते हैं। अच्छा फिर वो दे भी रहा है ना तो फिर भी शरबत है अगर तो पूरा ग्लास ना पी जाए, थोड़ा अंदर छोड़ दें, कोई कोल्ड ड्रिंक है तो थोड़ा अंदर छोड़ दें ताकि दूसरा ये ना कहे देखो पूरा ही खा लिया पूरा ही पी लिया। तो वो छोड़ना भी हमें एक हमारा कल्चर है कि हमने छोड़ के भी दिखाना है कि देखो हमें कितनी बेपरवाही, हम तो खाते ही रहते हैं, हमें इन चीजों की कोई परवाह नहीं, इस्लामी इस्लामिक एटिकेट्स नहीं है। हो सकता है हमारे वहां के हों एक बिल्कुल बेकार एटिकेट्स, लेकिन इस्लामिक एटिकेट्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है तो इसलिए इस तरह की बातों को छोड़ देना चाहिए, और मेजबान की तरफ से भी ये होना चाहिए कि दिल खोल के दूसरे की मेहमान नवाजी करे और उसको खिलाए। एक होती है हमारी डेकोरेशन की मेहमान नवाजी, वो डेकोरेशन की पता है कैसी होती है, बस सजावटी, वो ही बिस्किट और वो ही निमको, वो हमने रखी हुई है, हर दफा जब वो कोई आता है उसके आगे रख लेते हैं, आप खाएं खाएं, वो उसमें बेचारा इतनी सी कोई चीज लेता है। अच्छा फिर उसके बाद तो हमने वो ही वापस ढक के रख देनी है, फिर जब दूसरा आएगा उसको भी देनी, वो खाने के लिए नहीं होती, सिर्फ सजाने के लिए होती, ना हमारा दिल होता है कि दूसरा खाए, ना वो बेचारा इतनी जुर्रत कर सकता है कि वो खा ले, क्योंकि ये सब सजावट की चीजें हैं, और अगर किसी ने खा ली तो कहेंगे देखो सारी खा ली, मैंने रखी थी फलां तो सारी खा गया, कितनी बुरे अखलाक है ना ये। तो दूसरे ये यहाँ पे जो जो सिद्दीक की बात है ना दोस्त की, तो अब दोस्त किसके दोस्त, ये नहीं है कि अगर शौहर के दोस्त हैं तो वो हमारे भी दोस्त हो गए, जी भी शौहर के दोस्त दरवाजे पे आए हैं, शौहर तो घर पे है नहीं, लो जी मैं तो इनके मेहमान नवाजी, इनको कुरान में है ना कि सिद्दीक के घर से भी खा सकते हैं, तो फिर आए मैं इनको खाना वाना खिलाऊं, नहीं ये नहीं है जरूरत आपको। ठीक है तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए कि ये अहकामात हमारी अपनी बेहतरी के लिए, इनमें एक बेतकल्लुफी भी फ्रैंकनेस भी ये सब भी है, लेकिन साथ साथ एक प्राइवेसी का भी अमल दखल है। ठीक है हम बाज दफा फ्रैंक होने लगते हैं तो इंतहाई ढीठ बन जाते हैं, इतने ही हद तक फ्रैंक हो जाते हैं कि दूसरे को सुनाते भी हैं कि अच्छा तुमने हमारे बस ये हमारी मेहमान नवाजी की और नहीं तुम्हें कुछ मिलता, हमेशा ये आओ तो एक ही चीज खिलाती रहती हो, एक ही मेन्यू है तुम्हारे पास बस, तुम और नहीं कुछ तुम्हें बनाना आता, तुम भी कभी कुछ खिला दिया करो, या तो इस हद तक गिर जाते हैं या फिर इस हद तक ही तकल्लुफ करते हैं कि बस ये कुछ खाना ही नहीं है, कि भाई दूसरा मिन्नतों पे उतर आए लेकिन आपने नहीं मुंह में कुछ डाल के देना। तो सारी चीजें गलत हैं, जो मेहमान नवाजी कर रहा होता है दिल से कर रहा है, उसका भी इसमें खुशी है, तो आप भी खुशी के साथ खाइए, कोई इसमें हर्ज नहीं है, यहाँ पे बता दिया गया कोई हर्ज नहीं, तो कोई गुनाह नहीं हो जाता अगर आप किसी के घर में कोई आपकी मेहमान नवाजी कर ले और आप कुछ खिला दे, या आपकी तौहीन भी नहीं हो जाती कि अगर आपने खा लिया उसके घर में तो जी हमारी इज्जत घट गई, क्योंकि क्या कहेंगे कि जी हम किसी के घर खाने के लिए आए, ना कोई खाने के लिए आता है ना कोई ऐसी चीज होती है, आपकी जितनी तौफीक है आप उतनी मेहमान नवाजी कर दीजिए, और जो आने वाला है उसको भी जितनी चाहत है वो उतना खा ले, ना वो ऐसा हो कि वो कंजूसी से मेहमान नवाजी में कंजूसी करे, ना वो ऐसा हो कि भाई वो सोचे कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने यहाँ खा लिया तो। तो इसी तरह आप जिन जो आपके दोस्त या हमसाए आपको कोई अपने घर की कीज दे जाए तो कि भाई ये काम कर देना, या मैं हमारा पार्सल आएगा उसको अंदर रख देना, कोई हरज नहीं, अगर उसमें से कोई आपने चीज वहां पे पड़ी भी आपने खा ली है तो कोई हरज नहीं, उसमें खयानत ना समझे कि आए वो घर पे नहीं है हमने खानी पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी तरह नौकरों के पास भी बाज दफा चाबियां दी होती मालिकान ने तो वो भी मारूफ तरीके से खा लेंगे तो कोई हरज नहीं, बाज लोग कहते हैं ना हम तनख्वाह देते हैं हमने हम खाना इसमें इंक्लूडेड नहीं, नहीं आप ये नहीं कह सकते किसी नौकर को, अगर कोई मसलन किसी बाग का माली है तो वो वहां से कोई फल उठा के खा लेता है तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा गया जिसकी आपको चाबियां आपके पास है, कोई किसी के जानवर की देखभाल करता है तो वो उसमें से अगर दूध उस जानवर का पी लेता है तो कोई हर्ज नहीं। तो इसलिए हाँ, मगर मारूफ तरीके से, ये नहीं हो कि वो आप किसी के घर में जाके खा रहे हैं और साथ थैलों में भी भर भर के लेके जा रहे हैं, बच्चों के लिए भी ले जा। इस तरह कोई पिज्जा पे, किसी पिज्जा शॉप पे काम कर रहा है, उन्होंने आपको इजाजत दिया, आपको दिया यहाँ पे खा सकते हैं, आपके पास उसकी चाबी है, मतलब है कि आप वहां पे एक काम करते हैं, आपके पास वहां की अथॉरिटी है, तो ये नहीं है आप आपके घर भी ले जाना शुरू कर दे। तो ये सारे अहकाम देखें कितने रीजनेबल हैं, कितने बैलेंस्ड हैं क्या। और ये जो खामखा की हमने चीजें अपने पर लादी नहीं है ना, खामखा के तकल्लुफात और खामखा की एक वो चीजें, ये नहीं होनी चाहिए। और जब हम किसी के यहाँ जाएं, चाहे वो इन घरों में से है, चाहे अपने दोस्त अहबाब के घरों में से है, खाना खा सकते हैं, मगर खाने के अलावा ये मतलब नहीं है कि अब आपको कुरान ने कह दिया कि कोई हरज नहीं है इसमें, तो अब आप दो चार उनकी चीजें तोड़ के भी आ जाएं, या आपके बच्चे तोड़ के आ जाएं चीजें, या आपने उनके घर को गंदा करके आ जाएं, या अपने जूते लेके उनके कारपेट पे चढ़ें, या उस पे सोडा गिरा के आ जाएं, या एक ऐसा तूफान ने बदतमीजी मचाएं कि उसके बाद वो बेचारा 100 दफा सोचे बुलाने से पहले। ये नहीं है हमारा हक, खाने की हद तक हक है, ठीक है। तो मुसलमान तो वो है ना जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, और हम में से बाज लोग ये परवाह भी नहीं करते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं दूसरों के घरों में और कितना उनका नुकसान करके चले जा रहे हैं, बाद में वो बेचारा बंदा कुछ कह भी नहीं सकता। बाज लोग अपने घरों के अंदर चाहते हैं कि लोग जूते उतार के आए, लेकिन जब दूसरों के घरों में जाते हैं तो जूते लेके चले जाते हैं उनके घर। आप अपने लिए जो चाहते हैं वैसा ही दूसरों के लिए चाहो ना, फिर अपने लिए कुछ क्राइटेरिया, दूसरे के लिए कुछ और क्राइटेरिया। तो ऐसे मेहमान ना बने जो लोगों के लिए अजियत का बायस बने, ये घर वाला आपके जाने के बाद जो है ना वो परेशानी हो रहे। तो चाहे अपना घर हो, चाहे अपने किसी प्यारे का घर हो, चाहे अपने किसी दोस्त का घर हो, बेतकल्लुफी हो लेकिन ऐसी ना हो कि दूसरे को अजियत दे दें आप। और इसमें कोई मोहब्बत और फ्रेंकनेस नहीं होती कि दूसरे को अजियत दें, दूसरे का नुकसान करें या दूसरे को परेशान करके रख दें, क्योंकि दीन क्या है, हदीस में आते हैं दीन खैर ख्वाही का नाम है। अपने घर के लिए बहुत सेंसिटिव होना, दूसरों के घरों के लिए तोड़ो मारो जो मर्जी करो, तो ये दुरुस्त रवैया नहीं है। और फिर उसके बाद नहीं, तो हम कौन सा, हम मेहमान है, हम तो कभी कभी आते हैं, तो इसका मतलब ये कि हमारे लिए जायज है कि मामू के घर, खाला के घर, पप्पी के घर हम चीजें तोड़ते फिरें, बच्चे हमारे तोड़ते फिरें। तो हमें इसमें फ्रेंकनेस या मोहब्बत नजर आती है कि कोई बात नहीं, आजादी है यहाँ पे, ये सही नहीं है। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू जमीअन औ अशतातन, नहीं है तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह कि अगर तुम मिलजुल के खा लो, एक साथ खा लो, या फिर तुम अलग अलग होके खा लो, ये तुम्हारे ऊपर कोई हर्ज नहीं है इसमें। यानी पहले लोग, बाज लोग तो ऐसे करते थे, इतने इसमें सेंसिटिव होते थे कि अकेले खाते ही नहीं थे, जब तक कोई ढूंढ के ना बंदा ले आते जिसको साथ मेहमान बना के तो उसको खिलाते थे। बाज लोग किसी के साथ भी नहीं खाना चाहते थे, वो कहते थे हम अकेले ही खाएंगे, तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं, अकेले खाओ या मिलजुल के। हाँ ये जरूर है कि मिलजुल के खाने में बरकत है। इसी के ऊपर उलमा कहते हैं कि ये भी इससे नुक्ता निकलता है कि अगर आपके घर में आपने किसी को इनवाइट किया हुआ है और वो देर से आ रहा है, तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर मतलब पता है कि वो देर से आ रहा है तो आप दूसरों को बिठाए छोड़ें कि नहीं सबने मिलके ही खाना है, और मिलके ना खाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब उसको सजा है कि वो बैठा रहे और इंतजार करता रहे कि वो तशरीफ लाएंगे जो सबसे वीआईपी हैं, सबसे देर में वो आएंगे, हम उनकी खातिर हम भूखे बैठे रहे, इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई हर्ज नहीं है कि जो पहले आने वाले हैं उनको आप पहले खिला दें, जो बाद में आने वाले हैं उनको बाद में खिला दें, जो पहले आ गए हैं वो सारे मिलके खा दें, उसके बाद जो बाद में आने वाले वो अकेले खा लें, या आपने अगर पहले खा लिया है मेहमानों के आने से पहले, आपका पहले टाइम है, आपने पहले खा लिया, आप मेहमानों के साथ नहीं खा सकते इसलिए क्योंकि वो बहुत देर हो जाएगी आपके लिए, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है, फाइजा दखल तुम बुयूतन فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اوپر. اپنے اوپر سلام کرنے کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ایک دوسرے کو سلام کر رہے، کہ وہ بھی اپنا آپ ہی ہے نا، جیسے ہمارے اپنے مسلمان ہیں جو گھر میں ہیں وہ ہمارے اپنے ہی ہیں نا، تو ان کو سلام کیا کرو. کیوں؟ سلام میں مبارکتاً طیبتاً، سلام میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، پاکیزہ چیز ہے، اس میں بڑی خیر ہے. آپ دعا دیتے ہیں اور دعا لیتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پہ آپ پہ اپنی رحمتیں بھیجے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنی ساری چیزیں آپ اس میں دعائیں دیتے ہیں اور لیتے ہیں، تو یہ تو بہت پیارا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، بجائے ہائے، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہ اس طرح کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سلام کریں. اور دوسرا معنی انفسکم کا یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں جائیں تو جس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں، مثلا آپ اپنے گھر میں آتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ ساری فیملی تو ساتھ ہی ہے، تو گھر میں تو کوئی بھی نہیں، گھر تو خالی ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو وہاں پہ آپ کس کو سلام کریں گے؟ نہیں، تب بھی آپ نے سلام کہنا. بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم پھر بھی کہہ دیں، چاہے گھر خالی بھی ہے، کیونکہ فرشتے تو ہیں نا یہاں پہ. بعض کہتے ہیں کہ وہ جو التحیات والا ہے نا، وہ والا کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کیونکہ جن بھی ہیں فرشتے بھی ہیں، تو آپ پھر بھی کہہ دیں کہ ہم پہ بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پہ بھی، چاہے خالی گھر ہے پھر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ادب آنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں بھی، خالی گھر میں آئیں، رات کو ہم کہیں سے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ہم سلام کریں. اور اگر گھر میں آپ کو پتہ ہے لوگ ہیں، تب تو کرنا ہی کرنا ہے. جو اگر خالی گھر میں آپ کو کرنا ہے، تو جب گھر میں کوئی ہے تو پھر کیوں نہ کریں گے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مجلس میں پہنچے، کسی مجلس میں، تو سلام کرے، پھر اس کے بعد بیٹھے. بیٹھنے کو جی چاہے تو بیٹھے، اور جب کھڑا ہو تو پھر سلام کرے. اور پھر ضروری نہیں کہ بیٹھے ہی، پھر جا بھی سکتے، یعنی جاتے وقت بھی سلام کرے، آتے وقت بھی سلام کرے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ خدا حافظ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ساتھ سلام بھی کر لیں. فون بند کرنے لگے ہیں، خدا حافظ بھی کر رہے ہیں تو ساتھ سلام بھی کر لیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ تمہاری بہتری کی ہیں باتیں، تو عقل کرو اس میں، سمجھو اس بات کو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، عقل والی باتیں. تو ہم نے کیسے گھروں میں جانا ہے، کھانا اکیلے کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، یا مل کے ہی ہمیشہ کھانا ہے، یا مل کے کھانے میں نہیں جی میں نے نہیں کسی کے ساتھ کھانا، میں تو اکیلی کھاؤں، تو کوئی دونوں چیزوں میں کوئی حرج نہیں. ویسے ایک فیملی کے لیے بہتر ہوتا ہے کم از کم وہ ایک ٹائم کا کھانا ساتھ کھائیں، کیونکہ ایک کہاوت بھی ہے نا، فیملی دیٹ ایٹس ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. تو واقعی کھانے میں، ساتھ کھانے میں بہت برکتیں ہوتی ہیں، تو کم از کم ایک ٹائم کا. ایسا نہیں ہوگا کبھی ساتھ بیٹھ کے کھائیں ہی نہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے. انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں. کون لوگ مومن ہیں؟ مومن انسان اپنے آپ کا نام بھی مومن رکھ لے، مومنہ رکھ لے، یا اپنے آپ کو کتنا بھی ایمان والا کہلاتا رہے، لیکن اصل میں مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا، یہ ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ جب کانو معاہو علی امر جامین، اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ رسول کے ساتھ. علی امر جامعین، کسی اجتماعی کام میں، ایسا کام جو سب کا ٹوگیدر ہوتا ہے، یعنی جس میں سب، جیسے کہ عید کی نماز ہے، یا جمعے کی نماز ہے، یا جیسے اس زمانے کے اندر جنگوں پہ جانے کے لیے مشورے کیے جاتے تھے، ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جاتی تھی، کوئی میٹنگ کی جاتی تھی، وہ والے کام ہیں. تو ایسے جو اجتماعی کام ہیں، جو سب کی فلاح و بہبود کے کام ہیں، سب کی خیر کے کام ہیں، ان کاموں کے اندر جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی ایٹیکیٹس کیا ہیں؟ کہ لم یذہب حتی یستأذنوہ، وہ نہیں وہاں سے جاتے جب تک وہ اجازت نہ لے لیں. यानी जब किसी इज्तमाई का, मैंने आपको बताया ना, जैसे मशवरे की कोई मजलिस है या कोई इज्तमा है जिसमें कलेक्टिव सब की कोई भलाई की कोई मीटिंग हो रही है, या जुमे की है या ईद की है या क्लास है कोई, जो तालीम की मजलिस है, इस तरह की कोई मजलिस है, तो अहले ईमान की क्वालिटी क्या है? मोमिन असल में वो है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, और उनकी तीसरी एक क्वालिटी ये बताई गई कि वो मोमिन होते हैं कि ऐसे कामों से वो भागते नहीं है, वो खिसकते नहीं है, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो अगर उनको जाना पड़े भी ना तो वो इजाजत ले लेते हैं, ठीक है? इजाजत लेके जाते हैं। अब ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का अदब है। आपने देखा ना सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जो आखिरी आयात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं और जुमे का वक्त है, और उस वक्त एक काफिला आ गया तो लोगों को जब पता चला तो भाग गए उठ के, तो इसके ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत उनको सरजनिश की कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नबी को इस तरह छोड़ के और चल पड़ते, और सारे ही अगर चले जाते तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई सजा आती। तो किसी भी जगह से जहां पे इज्तमाई काम हो वहां से ऐसे ही खिसकना नहीं चाहिए कि चलो कोई कौन सा देख रहा है। जैसे अजाब के मौके पर जैसे खंदक खोदने का सबको हुक्म दिया गया, तो कौन सा कोई देख रहा है, चलो मैं घर जाके जरा रेस्ट ही कर लूं, चलो किसी को कौन सा पता चलना है, आपकी ड्यूटी लगाई गई है कहीं, तो कोई पता थोड़ी चलेगा किसी को कि ये आई भी थी कि नहीं आई थी या ये पहले ही निकल गई थी। तो आपकी ड्यूटी है कि आपने यहाँ पे खड़े होना है, मसलन आपने कोई फ्लायर देने हैं, मसलन आपने कोई साइन इन शीट पे साइन कराना है, मसलन आपने कुछ भी कोई भी ऐसा काम है जो इज्तमाही काम है ना, टुगेदर सबका है, तो उसके अंदर से उठ के जाना बगैर इजाजत के या उसमें से खिसक जाना बगैर इजाजत के, आप बताए ही नहीं कौन सा पता चलेगा किसी को, तो ये ईमान वाले की क्वालिटी नहीं हो सकती। इसी तरह क्लास हो रही है, पीछे से ही कोई निकल के चले जाए, ये ईमान वाले की क्वालिटी नहीं। फिर आप इजाजत मांगो, इन लजीना यस्तअजीनुना का उलाइक लजीना युमिनुना बिल्लाहि व रसूलिही। अब देखें कितनी बड़ी बात ये कर दी गई, और कितनी बड़ी एटिकेट्स हैं जो हमें सीखने की जरूरत है, कि बेशक वो लोग जो इजाजत मांगते हैं आपसे, यही लोग हैं जो ईमान वाले हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। यानी जब आपको कोई ड्यूटी दे दी गई या आप किसी उसमें शामिल हैं, उसमें से निकलना ऐसे नहीं होगा कि अब आप अपनी मर्जी से उठ के, और आपको चूंकि ये है कि पता तो चलेगा नहीं ना, मेरा नाम तो आ ही गया है, हाजिरी तो मेरी लग ही गई है कि मैं यहाँ पे थी, मैंने अपनी शक्ल तो दिखा ही दी है ना, अब मैं खिसक जाऊं तो ये नहीं होगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का अदब तो था ही, लेकिन आपके बाद जब भी इज्तमाई काम होंगे तो अमीर है कोई या टीचर है कोई या इमाम है कोई या जो भी उसको हेड कर रहा है उस मीटिंग को या जो भी उस काम को हेड करने वाला है, उससे इजाजत लिए बगैर नहीं जा सकते। और हमारी क्या आदतें होती हैं, हमें तो जो कि ये आदत पड़ी होती है कि बस शक्ल ही दिखानी है ना, शक्ल दिखा के तो बस खिसक जाए, ये मुनाफिकीन का काम था। फाइजस्तनू का भी लिबा दिशानी है फातन शेता मिन हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब वो इजाजत मांगे ना आपसे किसी काम के बारे में कि भाई हमें इजाजत दे दें, आप हमें जाना है, हमारी ये एमरजेंसी है, मुझे ये काम पड़ गया, मेरी अपॉइंटमेंट है, मेरा फलाना है, तो आप इजाजत दें जिसको आप चाहें, अगर आप मुनासिब समझें तो इजाजत दें, अगर ना ही मुनासिब समझते तो मत इजाजत दें। अब जैसे मुनाफिकीन कहते थे हमें इस जंग से इजाजत दे दें, हम पीछे बैठ जाएं, हमारे घर खुले हुए हैं, हमारे ये है, हमारे वो मसले हैं, तो यहां से पता चला कि जब इज्तमाई काम होता है ना, कलेक्टिव सारी कम्युनिटी का है, क्लास का है, किसी इंस्टीट्यूट का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, जब भी कोई इज्तमाई काम है ना, उसमें से कोई एक बंदा इस तरह से सुस्ती या गफलत की वजह से या बस अपनी मर्जी की वजह से या इस वजह से वो ऐसे खिसक नहीं सकता, क्योंकि इससे नुकसान होता है। वो हमें फेस सेविंग का बस शौक होता है ना, तो बस फेस दिखाना हमारा वो होता है, हमें काम से नहीं दिलचस्पी होती, मैंने अपना नाम लिखवा दिया ना कि मैं आई थी, बस काफी है। अब एक निकलता है ना उसको देख के, फिर दूसरा भी कहता है मैं भी चली जाऊँ, मैं क्यों यहाँ पे खड़ी हूँ, सुबह से मैं क्यों काम कर रही हूँ, और मेरा अकेली का काम है, फलां भी तो चला गया, वो भी निकल जाता, फिर तीसरा देखता है वो भी निकल जाता, इस तरह तो काम नहीं हो सकते। हम जब अपने पर्सनल काम होते हैं तो हम कितनी डेडिकेशन से खड़े रहते हैं, हमने कहीं स्टॉल लगाया हुआ है, हमने कहीं कोई चीज बेचनी है, तो हम तो ऐसे खड़े रहेंगे क्योंकि हमारा अपना काम है ना, हमें फायदा है। लेकिन मिसाल के तौर पे वो अल्लाह के दीन का काम है वो, तो अब हमें ये हुआ कोई और ही कर ले। मैं बस आई 2 मिनट के लिए, उसके बाद इधर उधर टाइम पास किया, और उसके बाद ऐसे खिसके के बस पता ही नहीं चला कहाँ चलेगा वो, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना किसी को, अल्लाह ताला तो जानता है। लेकिन तो इज्तमाही कामों में हमारी कितनी सुस्ती होती है, इसीलिए उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है ना, क्योंकि हम अल्लाह के दीन के कामों के अंदर वैसे मुखलिस नहीं है, सिंसियर नहीं है, अपना आप लगाना नहीं चाहते, कोई और ही कर ले, मुझे ना करना पड़े, आएंगे भी तो लेट और उसके बाद वो जल्दी से निकल भी जाएंगे। ये ईमान वाले की सिफत नहीं है, क्योंकि फरमाया जो इजाजत लेते हैं ना, हम इजाजत लेने को तो कुछ समझते ही नहीं, हम क्यों इजाजत लें, अटेंडेंस लगाई और गायब हो गए, इजाजत क्यों ले, इजाजत लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम चले गए थे, इजाजत लें उन, वो है ईमान वाले अल्लाह और उसके रसूल पे, कितनी बड़ी शर्त लगा दी गई। अब कितने लोगों को ये बात भी पता होगी, आई डोंट थिंक कि किसी को पता होगी, सिवाय उनके जो कि कुरान बड़े गौर व फिक्र के साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं। अभी कितना अहम बात है, छोटी बात है ये कोई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है नबी फिर आप जिनमें से जिसको चाहे इजाजत दें, जिसको चाहे आप ये समझते हैं कि इसका जेन्युइन रीजन नहीं है मत दें इजाजत, और जिसको आप इजाजत दे भी दें वस्तगफिर लहुमुल्लाह, उनके लिए अल्लाह से ताला से इस्तगफार करें, क्यों इस्तगफार की क्या जरूरत है, इसलिए कि खैर का काम था जिससे ये महरूम हो गया। हमें कभी महरूमी लगती है कि हाय मुझे जाना पड़ गया, मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं या इसमें हिस्सा नहीं ले पा रही, या मुझे जल्दी निकलना पड़ रहा है, और मुझे एक्सक्यूज भी कर दिया गया, लेकिन हाय मेरी नेकी एक रह गई, इस तरह का दुख होता है हमें, या हम इसके ऊपर तौबा इस्तगफार करते हैं? नहीं, कहा गया अमीर को कि आप इस्तगफार करें इनके लिए, इसमें कितनी बड़ी खैरख्वाही भी है एक अमीर की। अल्लाह ताला ने यहाँ पे तो अपने नबी को फरमाया ना, नबी के बाद जो भी अमीर होगा उनको कहा गया कि आप इनके लिए तो इस्तगफार करें कि अल्लाह इनको बख्श दे, क्योंकि एक नेकी के काम से ये पीछे रह गए, नेकी के काम में पूरी तौर पर उसको कंप्लीट नहीं कर सके। सुभान अल्लाह, हम तो इस पे खुशियां मनाएं कि शुक्र है जान छूटी, हमें हमें इजाजत भी मिल गई, मैं तो बहाना कर दिया था, मेरे तो सर में दर्द है, चलो इजाजत मिल गई, बड़ा अच्छा हो गया, हाजिरी भी लग गई, इजाजत भी मिल गई, नाम भी हो गया कि आए थे। तो देखिए कितने फर्क है ना, कुरान हमें कैसा है इंसान देखना चाहता है और हम कैसे हैं, इज्तमाही कामों में कितना जरूरी है कि इंसान जेन्युइन होके काम करे, तभी वो फ्रूटफुल हो सकते हैं, बस हाजिरियां लगाने की फिक्र ना करे, चेहरा दिखाने की, शक्ल दिखाने की फिक्र ना हो, ये हो कि मुझे इससे अजर मिलना है, अरे मेरा 1 घंटा भी कम हुआ ना तो मेरा अजर कम हो जाएगा, इसका मतलब कितना भाग भाग के इसके अंदर आगे आगे होके काम करे, इसका मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ काम करे, पूरा वक्त दे, और जिसको इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, बस नाम बनाने में, फिर वो ये कहता रहता है क्या मुसीबत है, अरे अल्लाह मुझे कब निकलना पड़े, आप कोई देख तो नहीं रहा, चलो निकल जाती हूँ। तो ये निकलना को बहुत बड़ी स्मार्टनेस नहीं है कि किसक गए और किसी को पता नहीं चला, इसके ऊपर तो इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है, उस बंदे को भी और उसके लिए उसके अमीर को भी। अल्लाह अकबर, इन अल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो आप अल्लाह से उनके लिए दुआ करें कि जो कमी इनसे रह गई है अल्लाह दरगुजर कर दे, क्योंकि ये मुखलिस इंसान है, ये वाकई करना चाहता था, इसका जेन्युइन रीजन है, इसको जाना पड़ गया, और इस वे भी इस्तगफार करें कि लीडर भी कभी कभी अपसेट हो जाता है ना कि आए अब देखें ये भी चला गया ये भी चला गया तो फिर क्या कैसे हुआ काम, तो दिल आप उनसे बुरा ना करें, उनके लिए आप इस्तगफार करें, उनके लिए दिल को नरम रखें, अच्छा रखें, आपके दिल में कोई उनके बारे में बुराई ना आए, और ना ही उनको डांटें और ना ही उनके साथ बुरा भला उनको कहें। بلکہ استغفار کریں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم دعاء بعدکم بعدا، نہ تم بناؤ رسول کی دعا کو، رسول کے پکارنے کو آپس میں، جیسے پکارنا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہاں سے یہ آداب نبوی ہیں، اصل میں 62 سے 64 تک نا نبی کی آداب ہیں. اور یہاں پہ بھی پہلے اجتماعی احکامات گئے، یہاں پہ کہا گیا اہل ایمان کو کہ آپ ایسے نہ نبی کو پکارو، ایسے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. کہ جب آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو کیسے ہم بلاتے ہیں؟ نام لے کے بلاتے ہیں، او فلاں ادھر آ جاؤ، ایسے نہ بلائیں. اور آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارتے تھے، وہ بدو وغیرہ کوئی آ جاتے تھے تو وہ تو ایسے کر لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ کہہ کے پکارتے تھے. اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اس طرح کہہ کے پکارتے تھے. تو ایسے نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کو کہتے ہو، یار تم کہاں گئے، یار تم کہاں سے آئے، او فلاں او فلاں، ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کسی بھی انسان سے زیادہ اوپر ہے، اور آپ تو اپنے ماں باپ کو بھی اس طرح نہیں پکارتے کہ اپنے ماں باپ کا نام لے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ سے بھی بلند ہیں، تو ان کو کیسے ایسے کریں گے؟ اس لیے آپ یہ بھی نہ کہا کریں حضرت محمد حضرت محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج کے ساتھ ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کہتے ہیں تو یہ درود ہے ان کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں. یہ کیا چیز کا طریقہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد حضرت محمد، کس کو آپ بلا رہے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو ایسے کہتے ہیں؟ تو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہتے ہیں؟ اور حضرت کا تو خیر لفظی کوئی فائدہ نہیں ہے کہنے کا، ساتھ درود بھیجیں، یہ ہے طریقہ. حضرت کی ضرورت نہیں ہوتی. سورہ حجرات میں آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسی بات ہو گئی تو یہ نہ ہو تمہارے سارے عمل ہی ضائع ہو جائیں. اس لیے بہت کیئرفل رہیں اس چیز سے. اچھا، دوسرا اس کا معنی، اس کا سیکنڈ معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسے نہ سمجھو جیسے آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. کہ یعنی جب آپس میں آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو چاہے جائیں یا نہیں جائیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تمہیں تو تمہیں لازمی جانا ہے. تو ان کا بلانا ایسے نہ کہو، بلانے سے مطلب یہ کیا ہے؟ یعنی جب وہ آپ کو بلائیں کہ بھئی آپ ادھر آئیں تو اب یہاں آپ کو جانا ہے، یہاں پہ یہاں آپ کو کسی کام کے لیے بلا رہے ہیں، تو اب آپ سوچیں دعائے رسول، تو ان کا بلانا ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ ایک دوسرے کو دوست احباب ہیں، تو بھئی کوئی بلاتا ہے نا ادھر آؤ، تو آپ کہتے نہیں میں نہیں آ رہا. ایسے نہیں کر سکتے آپ، ان کے بلانے کو ایسے نہیں سمجھیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. تیسرا مفہوم دعا کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ایسے نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کی دعا کو تو سمجھتے ہو، یا ہم ایک دوسرے کی دعا کو مثلا اتنا کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا دعا کو یا بد دعا کو کوئی کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کسی نے دعا بھی دے دی تو ناٹ اے بگ ڈیل، نہیں بھی دی تو ناٹ اے بگ ڈیل. نہیں، نبی کی دعا اتنی لائٹ بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے تو کسی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور آپ کی بد دعا سے کوئی ہلاک ہو سکتا ہے. تو آپ کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے تو انسان تن من دھن کی بازی لگا دے. اسی لیے ابو لبابہ نے خود کو باندھ لیا تھا نا ستون سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ جب آ کے مجھے کھولیں گے تو میں آزاد ہوں گا، ورنہ میں یہیں پہ اپنے آپ کو باندھے رکھوں. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو دعا حاصل کرنے کے لیے صحابہ کتنی کوشش کرتے تھے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا بھی فرما دیتے کہ یہ جو کرے گا اس کے لیے جنت ہے، یا یہ جو کرے گا اس کے لیے بخشش ہے، تو دوڑتے تھے کہ میں جا کے یہ کام کر لوں. تو اب کیا ہے؟ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہمیں اس طرح دعا یا بدعا یا کسی کو ایسے نہیں دے سکتے، تو پھر اب کیا ہے؟ اصل میں اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا جس میں آپ نے کوئی دعا دی ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میرے سے بات سنے اور اس کو آگے پہنچائے، تو اب آپ حریص ہوں کہ میں آپ کی دعا لے لوں. آپ نے دعا دی ہے تو میں اس کو حاصل کرنے والی بن جاؤں. اس طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحید سنائی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں जो वो मसलन जखीरा अंदोजी करता है, वो हमें से नहीं जो बड़ों की इज्जत ना करे और छोटों से पर शफकत ना करे, इस तरह की बात नहीं। तो हमें से नहीं लईसा मिन्नी का मतलब यही होता है कि आप सरसर मुझसे बहुत नाराज हैं, यहाँ बहुत एक बड़ी बात है, एक वहीद है, एक बद्दुआ है, यानी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग हो जाए ना तो कितनी बड़ी बात हो जाती है ना। तो फिर हम उन चीजों से बचें, क्योंकि वो हम समझ लें कि अगर हम वो करेंगे तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बद्दुआ को अपने ऊपर ले रहे हैं। इसी तरह जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करा सका, फरमाया वो हलाक हो गया, तो ये एक बद्दुआ है। तो बद्दुआओं से बचना चाहिए और दुआ लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे गुस्से हुए, जिस पे कोई वहीद सुनाई, उसके लिए जहन्नुम है या उसके लिए अजाब है, या किसी के लिए दुआ दी के फलाने को अल्लाह ताला सलामत रखे, जो मुझे जुबान और शर्मगाह की जमानत देगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ, तो ये तो दुआएं हैं ना। तो हम फिर उन कामों को करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसलिए आज भी इस चीज का इसकी काबिले अमल है ये। मुनाफिक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते थे तो आपस में एक दूसरे को देख कर कहते थे कि किसी तरह हम इसे बच ही जाएं, हम कोई हमें कुछ करना ही ना पड़े। बेसमझी और बेअकली की ये बात थी। और अगर लेकिन उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी आने वाले इसी तरह का रवैया करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सामने आ जाए तो कहें कि मैं किसी तरह इसे बच ही जाऊं, मुझे तो ना सुनाओ ना मुझे अमल करना पड़े, मैं तो सुनना ही नहीं चाहती, और मेरी अम्मी तो ये कहती हैं और मेरे शौहर तो ये कहते हैं और नबी ने जो कहा होगा वो तो कहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, हमारे तो ये कहते हैं, तो ये क्या है। मुनाफिकीन का यही रवैया नहीं था। तो उनके बुलाने को ऐसे ना कहो, ऐसे ना समझो, उनकी दुआ या बद्दुआ को इतना लाइट ना लो, ठीक है। अल्लाह अकबर। वलयहज़र अल्लज़ीना युखालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। डर जाएं वो लोग जो मुखालफत करते हैं नबी के हुक्म की, कि उनके ऊपर आ जाए कोई फितना या कोई दर्दनाक अजाब उनको छू जाए या उनके ऊपर पहुंच जाए। अब बाज़ उलमा कहते हैं कि नबी की मुखालफत के ऊपर ये जो पहली सजा बताई गई है दुनिया की सजा है, तुसीबा हम फितना तुन और युसीबा हम अजाबुन अलीम, ये आखरत की सजा है, क्योंकि दर्दनाक अजाब तो सिर्फ आखरत में ही हो सकता है। बाज कहते हैं कि ये जो पहला भी है ये भी दुनिया में भी हो सकता है और आखरत में भी, और जो दूसरा है ये तो आखरत का अजाब ही है। फितने से मतलब वैसे तो अजाब भी होता है, मुसीबत भी होती है, आजमाइश भी होती है, गुमराही भी होती है, और ये वो फितना भी हो सकता है कि इंसान अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह गुमराह हो लेकिन खुद को हिदायत पे समझ रहा हो, ये भी हो सकता है, ये भी फितना है। और ये तो सबसे बड़ी बदबख्ती है कि इंसान वैसे तो गुमराही के रास्ते पर चल रहा हो लेकिन अपने आप को समझे नहीं जी हम तो बिल्कुल ठीक है। और ये सलफ सालेहीन इससे इतना डरा करते थे, इतना डरा करते थे इस बात से कि कहीं रसूल की मुखालफत ना हो जाए। वो कहते थे कि हम ये दुनिया में भी फितने में ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत का शिकार हो जाए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा था ना, वो लेफ्ट हैंड से खा रहा था, तो आपने फरमाया उसको राइट हैंड से खाओ, उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेफ्ट से ही खाता रहा। आपने फिर फरमाया, फिर भी नहीं उसने किया, आपने फिर फरमाया, तो फिर वो कहने लगा मैं नहीं खा सकता, मुनाफिक था कोई, कहने लगा मैं नहीं खा सकता राइट हैंड से। हमारे तो कई लोगों को मुसलमान है लेकिन फिर भी उनको लेफ्ट हैंड से ही खाने का शौक होता है, तो कहने लगा मैं नहीं खा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि किसी को बद्दुआ नहीं देते थे, लेकिन आपने फरमाया अल्लाह करे तो कभी भी ना खा सके। और वो बंदा उसकी देखें रसूल की बात की मुखालफत की ना, उस बंदे का ये हाल हो गया कि वाकई राइट हैंड उसका ऐसे सूख गया कि वो कभी नहीं उसे खा सका दोबारा, लेफ्ट से ही इस्तंजा करता था, लेफ्ट से ही खाता था। तो ये चीज को समझ लेना चाहिए कि रसूल की बात की मुखालफत कोई छोटी बात नहीं होती। यानी आप देखें आज रसूल की बात कैसे आप तक पहुंचेगी, आज तो सामने नहीं बैठ के वो कुछ बता रहे, हदीस है ना, तो हदीस आप किसी को सुनाएं और दूसरा आगे से कहे मैं नहीं समझती इसको सही, आप ये बताएं हमारे इमाम ने क्या कहा, आप ये बताएं हमारे फिक्र में क्या है, फिके हनफी में क्या, वो आपके सामने हदीस रखी हुई आप कह रहे हैं फिके हनफी में क्या, अकल की भी कोई बात होनी चाहिए ना। हदीस जब आ जाए तो बस अपने मुंह को सी लें कि ये हदीस है, सही हदीस है, बादशाह देखे जयीफ ना हो, सही हदीस हो, तो फिर बस कोई आगे क्वेश्चन ही नहीं है कि हम इतने केयरफुल होते थे। सईद बिन मुसैब कहते हैं उनके पास एक आदमी मिलने के लिए आया तो जाने लगा तो मस्जिद से जा रहा था, अजान हो गई भी थी। अब मर्दों को आप वैसे भी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अजान हो जाए तो फिर उसके बाद नमाज पढ़े बगैर ना जाया जाए, तो उन्होंने फरमाया कि अजान हो चुकी है तो अब आप नमाज पढ़ के जाए, तो उसने कहा कि नहीं मेरा तो काफिला जा रहा है मैं तो जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने इंसिस्ट किया लेकिन वो नहीं माना, और जब वो गया तो वो काफले में अपने ऊंट पे बैठने लगा तो वो गिर गया और उसका पैर टूट गया। तो यही उन्होंने फरमाया कि देखो जब तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की मुखालफत की तो मुसीबत इस दुनिया में भी आई, तो मुसीबतें आती हैं इस दुनिया में भी आ जाती हैं। दुनिया में इंसान को कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी चीज, कोई गुमराही में वो फंस सकता है, या आपस के अंदर जो फटना है, ग्रोह बंदियां होनी है, वो भी एक कितनी बड़ी एक फितना। तो ये सब चीजें हो सकती हैं जब रसूल की बात की मुखालफत की जाए, और हमारे पास कितने अच्छे बहाने हैं रसूल की बात को तो समझते नहीं। अच्छा कुरान में लिखा है, नहीं कुरान में नहीं लिखा तो हदीस में है, तो हदीस को तो इतना कुछ समझना ही नहीं, कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पे कहा गया कि डर जाए वो लोग जो मुखालफत करते हैं अल्लाह के नबी के हुक्म की मुखालफत करते हैं। मुखालफत क्या है, युखालिफूना किसे, खालफा युखालिफ, पीछे रहना, पीछे रहना। क्यों, देखिए आप मुकाबला अल्लाह के रसूल के फरमान का मुकाबला करना तो बाद की बात है, वो तो बहुत ही बड़ी बात है, सिर्फ पीछे रहना भी कि कोई बात नहीं हदीस ही है ना, ये कितनी बड़ी बात है कि इससे दुनिया में भी फितना पहुंच सकता है और आखरत में अजाबे अलीम है। और ये जो लोग कहते हैं हम हदीस को नहीं मानते, हदीस तो बाद में लिखी गई, हदीस तो ऐसे है, वो क्या इसका जवाब देंगे। तो ये बहुत सख्त बड़ा गुनाह है कि आपका फरमान सुन के उस बात को कोई खातिर में ही ना लाना, उस बात को कुछ बड़ा समझना ही ना, और उससे अमल में पीछे रह जाना। उनको ऐसे लोगों को डराया गया कि डर जाओ, तो तुम्हें नहीं ये फिक्र होती कि अल्लाह ताला दुनिया में तुम्हारे पर कोई मुसीबत भेज दे, और ये ना हो कि जो हमारे पर मुसीबतें हैं उनकी वजह हमें देखनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रसूल के अहकामात की कोई मुखालफत कर रहे हैं। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जान लो बेशक अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में। इसके भी एक माना ये निकलता है कि हर चीज की मिल्कियत अल्लाह के पास है, वो मालिक है हर चीज का। दूसरा माना इसका निकलता है हर चीज उसकी मखलूक है, अल्लाह के लिए है मतलब उसकी मखलूक है, उसकी तखलीक है। नंबर थ्री माना यह है कि हर चीज अल्लाह के लिए है मतलब अल्लाह के मातहत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म मानती है हर चीज जो आसमान और जमीन में। कद यालम, तहकीक वो जानता है, मा अंतुम अलैह, जिस पर भी तुम हो, जो तुम कर रहे हो ना उसको पता है, अच्छी तरह खबर है। वेयर यू स्टैंड, तुम्हारी क्या स्टैंडिंग है ना, ये जो हम मुंह से बोलते रहते हैं हम तो बड़े अच्छे, हम तो बड़े सच्चे, हम तो बड़े फलां, हम तो उससे ज्यादा तो कोई है नहीं, अल्लाह ताला को अच्छी तरह पता है तुम है हो क्या चीज, तुम किधर खड़े हुए हो, तुम्हारी क्या दीन के मामले में या तुम्हारी किरदार अखलाक अमल के मामले में क्या स्टैंडिंग है। और यौम और जाऊना इलेही, और जिस दिन वो लौटाए जाएंगे उसकी तरफ, फयुनब्बी हूँ मैं माँ आमिलू, तो तब वो बताएगा जो वो अमल करते रहे। वल्लाहु आलीम, वल्लाहु बिकुल्ली शयइन आलीम, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, हर चीज को जानने वाला है। तो हमारे बताने से, हमारे बोलने से ये नहीं है कि अल्लाह को पता चलता है, उसको तो हर चीज का पता है। हमारे दावे करने से नहीं कोई फर्क पड़ता कि हम कितने अमल वाले हैं और कितने बड़े अच्छे मुसलमान हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बता देगा सब जब लौटोगे, वो बता देगा कि क्या क्या करके आए हो और कितना तुम करते थे और तुम्हारी असलियत क्या थी, किधर तुम स्टैंड करते थे। अंतुम अलैहि, जिस पर तुम हो उसको पता है अच्छी तरह। तो अमल के ऊपर फोकस ज्यादा हो और बातों पे कम हो, दावों पे कम हो, बड़ी बड़ी डींगे मारने और शोखियां मारने इसके ऊपर नहीं ध्यान हो, जिसके लिए कर रहे हैं उसको तो पता है। अल्लाह ताला हम सबको बामल बना दे, अल्लाह ताला हमारे अमलों में इखलास पैदा फरमा दे, अल्लाह ताला अमल करना हम सब के लिए आसान फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.